आप हैं SBS हिंदी के साथ।
SBS हिंदी पर गौरव वैष्णव के साथ सुनिए 14 अप्रैल यानी मंगलवार शाम 5 बजे तक के मुख्य समाचार। ईस्टर की छुट्टियों में लोगों के व्यवहार की प्रधानमंत्री मॉरिसन ने की सराहना, कहा प्रतिबंध हटने पर जल्दबाजी में फैसला नहीं। भारत में 3 मई तक बड़ा लॉकडाउन और कड़े होंगे प्रतिबंध, और इंग्लिश प्रीमियर लीग को $1.2 अरब के नुकसान का अंदेशा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ईस्टर की छुट्टियों के दौरान ऑस्ट्रेलियाई लोगों के व्यवहार की सराहना की है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कब देश में लगे सामाजिक और व्यावसायिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने भी लोगों से ऑस्ट्रेलिया के लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों ने खुद को ईस्टर पर भी अलग थलग रखा वो सराहनीय है। हालत ये थे कि इन दिनों सामान्य ट्रैफिक का 13% से भी कम सड़कों पर था। श्री मॉरिसन ने SBS से कहा कि कब ये प्रतिबंध हटाए जाएंगे ये समय निर्धारित करना महत्वपूर्ण होगा।
But the easing of restrictions, if you mistime that, you will find yourself a situation like Singapore. I mean, Singapore's curve is going up. It's not flattened. And Singapore was one of the example jurisdictions just a few weeks ago. So we cannot be complacent. We're not being complacent. We know we need to get the economy back ultimately to a much higher level of activity it is now. We've got economic lifeline in place that we've put in for 6 months to actually plot and work our way through and out of this.
आपको बता दें कि ये समाचार लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया में COVID-19 से मरने वालों की संख्या 61 थी, जबकि कुल 6,375 मामलों की पुष्टि हुई थी। हालांकि अच्छी खबर ये भी है कि इनमें से आधे ठीक भी हो गए हैं। बढ़ते आगे बात करते हैं नेता विपक्ष की, जिन्होंने कि केंद्र सरकार से उड्डयन उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता देने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से $1.4 बिलियन का ऋण के लिए बोली खारिज होने के बाद वर्जिन ऑस्ट्रेलिया का व्यापार ठप हो गया है, और एंथनी एल्बनीजी ने अब कहा है कि सरकार को इस मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए।
This isn't about favouring one airline or another. This is about favouring an industry structure that serves the national interest. This is about Australia's national interest, the interests of jobs, that social capital as well as physical capital that has taken more than a decade to build up.
वहीं केंद्रीय ट्रेजरर जोश फ्राइडनबर्ग ने दावा किया है कि सरकार के $130 बिलियन के जॉब कीपर वेज सब्सिडी योजना ने कोरोना वायरस की वजह से होने वाली बेरोजगारी के असर को कम कर दिया है। हालांकि ट्रेजरी को आशंका है कि जून की तिमाही में देश की बेरोजगारी दर 10% तक पहुंच सकती है, जिसका मतलब ये होगा कि 1.4 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन ट्रेजरी का मानना है कि बिना जॉब कीपर योजना के बेरोजगारी की ये दर 15% तक हो सकती थी। जोश फ्राइडनबर्ग ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोग इस दौरान भी खर्च करेंगे।
We announced $750 cash payments in the first tranche, and we've actually seen some of the spending as a result of that money, indicating that people are spending that money, whether it's at the local mechanic or whether it's at some other accumulated debts. So too with the JobKeeper package. Once that money flows through in the first week of May, people will be using it to meet the daily bills of life.
ऑस्ट्रेलिया में अब कोरोना वायरस को लेकर और ज़्यादा परीक्षण किए जाएंगे। सरकार इसके लिए सुनिश्चित करना चाहती है कि कहीं वायरस कम्युनिटी में न फैल जाए। विक्टोरिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अब अगर किसी को भी इस वायरस के लक्षण जैसे बुखार, सांस लेने में तकलीफ या फिर खांसी या फिर गले में खराश होती है तो उनका परीक्षण किया जा सकेगा। जबकि न्यू साउथ वेल्स में परीक्षणों का विस्तार करते हुए पेनरिथ, सिडनी के भीतर पश्चिमी इलाके और लिवरपूल, रैंडविक, वेवरले, वुल्हारा और ब्लैकटाउन, कम्बलैंड, वेस्टमीड, राइड, मैनिंग और लेक मैक्वरी के उन सभी लोगों को के परीक्षण की योजना बनाई गई है जिनमें इन वायरस के कुछ लक्षण अगर दिखते हैं। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रोफेसर पॉल कैली का कहना है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित लोगों के संपर्कों को तलाशने का काम भी जारी है।
One of the things that's been looked at is the use of apps or some other digital technology to do that. Google and Apple have talked in recent days about their own investigations. Several other countries are indeed using such apps, and so that is part of the broad discussion the government will be having in relation to the next steps.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा है कि वो देश को दोबारा खोलने की योजना के बेहद करीब हैं। कोरोना वायरस के कहर के मद्देनज़र देश में 30 अप्रैल तक सामाजिक दूरी बनाने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी हैं। इस घातक वायरस से देश की 95% से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। कोरोना वायरस पर एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि मैं अपनी टीम और शीर्ष विशेषज्ञों से इस पर बातचीत कर रहा हूं और हम देश को दोबारा खोलने की योजना को पूरा करने के काफ़ी करीब हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है ऐसा निर्धारित समय से पहले होगा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और अब खबरें भारत से। भारत में कोरोना वायरस को लेकर लागू किया गया 21 दिनों का लॉकडाउन आज ख़त्म हो रहा था, लेकिन आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में इस लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से काफ़ी हद तक इस वायरस के प्रसार को टालने में सफलता मिली है, इसके लिए उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कई सुझावों को ध्यान में रखते हुए इसे 3 मई तक बढ़ाया जा रहा है।
हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो राज्य कोरोना वायरस के खिलाफ सख्ती रखते हुए अपने शहरों क्षेत्रों को हॉटस्पॉट नहीं बनने देंगे, वहां 20 अप्रैल से ज़रूरी गतिविधियों की इजाज़त दी जाएगी। आगे की चुनौती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगले एक हफ्ते में कोरोना के खिलाफ जो सख्ती है वो बढ़ाई जाएगी। हर राज्य को परखा जाएगा, इसमें लॉकडाउन का कितना पालन किया जा रहा है इसका मूल्यांकन किया जाएगा। पंजाब में पुलिस की टीम पर हमले की घटना में एक पुलिस अधिकारी का हाथ काटे जाने के बाद उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ लाया गया था, अब उनका ऑपरेशन कर दिया गया है। पीजीआई के निदेशक जगत राम ने जानकारी दी है कि पंजाब के डीजीपी का घटना के बारे में फ़ोन आते ही ऑपरेशन थिएटर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अपने आप में काफ़ी जटिल था, लेकिन उन्होंने इसकी सफलता की उम्मीद जताई है।
And it took about 7.5 hours. It was a very very challenging surgery and was completed after 7.5 hours. At the end of the surgery, hand was warm and circulation was established. And today also I have seen the patient. Patient is cheerful and it will take time for recovery.
भारत के राज्य तमिलनाडु में कोरोना वायरस की घटनाओं की जानकारी देते हुए राज्य की स्वास्थ्य विभाग की सचिव डॉक्टर बीला राजेश ने बताया कि नए 58 मामले जो राज्य में आए हैं उनमें से 98 जो मामले आए हैं उनमें से 91 एक ही सोर्स से फैले हैं। अभी तक तमिलनाडु में 1,075 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है।
The number of passengers under home quarantine today are 33,850. There are 136 passengers under government quarantine. Those who completed 28 days follow-up, 63,380. Till yesterday, we had 1,075 positive cases. Today, the number of samples that are positive are 98. Of this 98, 91 are from a single source and 7 are from contacts.
Aur ab dollar ka haal. आज यानी मंगलवार को ये खबर लिखे जाने तक भारतीय रुपयों में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 49.01 रुपये थी, जबकि अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 64 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। एक और जहां खिलाड़ी आर्थिक मदद करते हुए भारत में पीएम फंड में अपनी ओर से पैसे दान कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो संकट के इस मुश्किल घड़ी में ज़रूरतमंद लोगों को अपना खून देने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे ही एक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जे लाल पेखलुआ। जे ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक कदम आगे बढ़कर मिजोरम के लोगों को खून देने का काम किया है। बता दें कि पूरे देश में इस समय लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसे में मिजोरम में संक्रमित लोगों को खून नहीं पहुंच पा रहा है। बढ़ते आगे बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व कप्तान गैरी नेविल का मानना है कि प्रीमियर लीग उन क्लबों के खिलाड़ियों के ट्रांसफ़र पर रोक लगा सकता है जो कोविड-19 महामारी के कारण वेतन में कटौती कर रहे हैं। इंग्लैंड में घरेलू फुटबॉल की शीर्ष लीग की कई टीमों ने अपने खिलाड़ियों के वेतन में 30% की कटौती का निवेदन किया है। एक अनुमान के मुताबिक अगर सत्र पूरा नहीं होगा तो प्रीमियर को $1.2 अरब का नुकसान हो सकता है। और अब डालते हैं नज़र कल यानी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। खबर पर्थ से, जहां पर आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। कल यहां पर अधिकतम तापमान 24 डिग्री न्यूनतम 17 डिग्री रह सकता है। एडिलेड में बादल छाते दिखाई दे रहे हैं, यहां पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में भी बादलों की आवाजाही रह सकती है, अधिकतम तापमान 24 डिग्री न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं, अधिकतम तापमान 24 डिग्री न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में धूप रहने की संभावना है, अधिकतम तापमान 26 डिग्री न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में ज़्यादातर धूप रहने की संभावना है, अधिकतम तापमान 28 डिग्री न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में धूप रहने की संभावना है, अधिकतम तापमान 34 डिग्री न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। भारत की राजधानी दिल्ली में धूप रहने की संभावना है, दिल्ली का अधिकतम तापमान 39 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। खबरों में आज इतना ही।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।